आप हैं SBS हिंदी के साथ। लीजिए पेश है समाचार कुमुद बिरानी के साथ। आज के मुख्य समाचारों में, विक्टोरिया में जून के महीने से अब तक सबसे कम कोरोना वायरस मामले दर्ज। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में कोई भी नए कोविड 19 मामले नहीं उभरे और भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 60 लाख को कर गई पार। और अब लीजिए सुनते हैं समाचार विस्तार के साथ। विक्टोरिया में कोरोना वायरस के सिर्फ 5 नए मामले रिकॉर्ड हुए हैं। ये संख्या 12 जून से लेकर अब तक की सबसे कम संख्या है। ये संक्रमण की दूसरी लहर के बाद से अब एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। विक्टोरिया में कोविड 19 संबंधित 3 मौतें हुई हैं। अब देश भर में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 875 तक पहुंच गई है। प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने टेस्टिंग योजना में इस सप्ताह आगे चलकर कुछ बदलावों की बात कही है और राज्य की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाने की बात भी घोषित की है।
This is the lowest daily case number for a very long time, and it's not so long ago that we were reporting not 5 cases, but 725 cases. So not 5 cases, 725 cases. We've come a long way. Victorians have given a lot. They have sacrificed a lot. And I am proud.
और मेलबर्न के रातों में लगाए गए कर्फ्यू को आज कोर्ट में कानूनी चुनौती दी जाएगी, मगर ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अब कर्फ्यू हटा दिया गया है तो उसके बाद ये अदालती कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। विक्टोरिया में क्वारंटीन जांच मामले की अंतिम सार्वजनिक सुनवाई में ये बताया गया है कि इस कार्यक्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता की कमी थी। काउंसिल असिस्टिंग रेचल एलियाड ने आज सबमिशंस बंद करते हुए कहा कि इस आपात हालत में सुचारू प्रबंध की कमी दिखाई पड़ती है। 60 गवाहों की गवाही के बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पुलिस या सेना की जगह प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को काम पर लगाने का निर्णय किसका था। टोनी नील क्यूसी का कहना है कि उम्मीद की जाती है कि जांच के दौरान विक्टोरिया की एजेंसियों, होटल चलाने वालों और प्राइवेट सेवा प्रदान करने वालों के निर्णयों से पर्दाफाश होगा।
To put the hotel quarantine program in its appropriate human context, that is, it was a measure that was apt to have profound psychosocial impacts on those who were involved in it.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि हालांकि जॉब कीपर आर्थिक सहायता में आज से कटौती की जा रही है, मगर इसे बंद नहीं किया जा रहा है। इस सहायता योजना की राशि को फुल टाइम कर्मचारियों के लिए आज से प्रति पखवाड़े $1,500 से घटाकर $1,200 किया जा रहा है और पार्ट टाइम कर्मचारियों के भुगतान को $750 हर पखवाड़े किया जा रहा है। श्री मॉरिसन ने चैनल 7 पर कहा कि अक्टूबर के बजट में दिखाई देगा कि जॉब कीपर भुगतान अगले साल भी जारी रहेगा और ऑस्ट्रेलिया में 7,60,000 रोजगार पद बहाल भी हो गए हैं।
It's there till the end of March, and what you'll see in the budget is a vote of confidence in the Australian economy. What you'll see in the budget is a vote of confidence in Australians, and that they, working together, will lift our economy out of the heavy blow that has suffered, and that will give people hope. Whether you're sitting in this chair or anywhere else in Australia at the moment, we've all got our challenges.
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार की टास्मन पार वाली नीति नए अवसरों की राह बना रही है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि क्रिसमस से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच यात्रा करने की छोटी सी संभावना है। इस वक्त न्यूजीलैंड सिर्फ अपने नागरिकों को और उन ऑस्ट्रेलियाइयों को प्रवेश की अनुमति दे रहा है जो न्यूजीलैंड में रहते हैं और वहाँ सबके लिए क्वारंटीन अनिवार्य है। न्यू साउथ वेल्स में आज दूसरा दिन है जब कोरोना वायरस के कोई नए केस दर्ज नहीं हुए हैं, मगर पिछले 24 घंटों की तुलना में यहाँ टेस्ट्स की संख्या भी आधी ही रही है। अधिकारी टेस्टिंग की घटती दरों को देखकर चिंतित हैं। अब के 6,400 लोगों ने ही टेस्ट करवाए हैं, जबकि पिछले टेस्टिंग समय काल के दौरान 12,333 लोगों ने अपने टेस्ट करवाए थे। प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजुक्लियान कहती हैं कि राज्य की सफलता के बावजूद वो नहीं चाहते हैं कि समुदाय एक गलत सुरक्षा भाव में बना रहे।
Well, we're getting through the pandemic. We're not through it yet. And certainly, I hope the citizens of New South Wales feel that no matter what comes up before us, that we're well prepared.
सिडनी के बेघर बार लोगों के लिए 20,000 मुफ्त फेस मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। ब्रिस्बेन में आज जिन तीन महिलाओं ने सीमा पार करने के फॉर्म्स पर क्वारंटीन से बचने के लिए कथित तौर पर झूठ बोला था, वे अदालत का सामना करेंगी। तीनों पर धोखाधड़ी और दस्तावेजों में गलत जानकारी देने का आरोप है। इनमें से दो महिलाएं जो विक्टोरिया गई थीं, उनकी कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकली और उन्हें कोर्ट में पहली बार पेश होने के बाद जमानत पर छोड़ा गया। क्वींसलैंड में आज कोरोना वायरस का कोई नया केस नहीं दर्ज हुआ है, मगर वहां पर 8 केस अभी भी सक्रिय हैं। कुछ अन्य समाचारों में, यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया की इस रिपोर्ट को रद्द किया है कि उन्होंने पिछले 15 सालों में 10 वर्षों के दौरान इनकम टैक्स नहीं भरा था। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल आयकर में सिर्फ $750 भरे थे और अपने विशाल व्यापार जाल में नुकसानों का दावा करते हुए अपना बिल उन्होंने घटा दिया था। श्री ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को झूठी खबर बताते हुए कहा है कि जब ऑडिटर्स उनके टैक्स रिटर्न्स का आकलन करेंगे तो स्पष्ट होगा कि उन्होंने कर अदा किया है।
Well, first of all, I paid a lot, and I paid a lot of state income taxes too. The New York State charges a lot, and I paid a lot of money in state. It'll all be revealed. It's going to come out.
भारत के समाचारों में, भारत में कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहां कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या 60 लाख से आगे निकल गई है। अब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण मामलों का दूसरा देश है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 82,170 मामले दर्ज हुए हैं, यानी कुल मिलाकर भारत में संक्रमण की संख्या 60,74,702 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,038 लोगों की कोविड-19 से मौत भी हो गई है। कुछ राहत इस खबर से मिलती है कि भारत में कुल 50 लाख लोग इस वायरस से भले चंगे भी हो गए हैं। आज सवेरे किसान बिल के विरोध में कुछ लोगों ने इंडिया गेट के सामने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। आग को बुझाने के बाद ट्रैक्टर को वहां से हटा दिया गया और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि आज सवेरे 7:15 और 7:30 बजे के बीच 15 या 20 लोग किसान बिल के विरोध में इंडिया गेट पर पहुंचे थे और साथ में वो एक पुराना ट्रैक्टर भी ले आए थे जिसमें उन्होंने आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। देश भर में किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल रविवार के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 कृषि विधेयकों को अपनी मंजूरी दी है। आइए एक नज़र डालते हैं मुद्रा दरों पर। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर भारत के 51.99 रुपयों के बराबर है और ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर US के 70 सेंट के बराबर है। और जाते जाते एक नज़र डालते हैं कल यानी मंगलवार के लिए ऑस्ट्रेलिया के मुख्य शहरों के मौसम और तापमान पर। कल पर्थ में एकाध बौछारें होंगी, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, अधिकतम तापमान होगा 21 डिग्री सेल्सियस। एडलेड में कल बारिश होगी, न्यूनतम 14, अधिकतम तापमान 20 डिग्री। मेलबर्न में धूप, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस। होबार्ट में भी धूप रहेगी, न्यूनतम 6 डिग्री, अधिकतम तापमान 18 डिग्री। कैनबरा में कल सवेरे कोहरा होगा, फिर धूप निकल आएगी, न्यूनतम तापमान 2, अधिकतम 18 डिग्री। सिडनी में भी भाई कल धूप होगी, न्यूनतम 10, अधिकतम 21 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक तौर पर बादल घिरे रहेंगे, न्यूनतम 13 डिग्री, अधिकतम 24। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और वहां न्यूनतम तापमान होगा 25 डिग्री, अधिकतम तापमान होगा 34 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्ते। ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।